أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پہاڑی واز پڑھ کر پیش کی جاتی ہے. پہاڑی واز. ڈلہوزی کے پادری الیکشن سے گفتگو. جون 1911 عیسوی. از حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پہاڑی واز. انسان کو اپنی عمر میں کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کو اگر محفوظ رکھا جائے اور تحریر میں لایا جائے تو نہ صرف اس کے لیے بلکہ بہت سے اور لوگوں کے لیے مفید و بابرکت ثابت ہوں. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات بڑے بڑے نتائج پیدا کرتی اور ایسے ایسے ثمرات اس سے نکلتے ہیں کہ جو سننے والے کے لیے خضر راہ ہو جاتے ہیں. مسیحیوں میں پہاڑی واز ایک ایسا اعلیٰ درجے کا پرمغز اور پرمعارف واز سمجھا جاتا ہے کہ جس کے مقابل میں دنیا کی کوئی تحریر اور نوشتہ نہیں ٹھہر سکتا، اور وہ 1900 سال سے اب تک اسے پڑھتے ہیں اور اس کی لطافت اور نزاکت پر سر دھنتے ہیں. مسیح علیہ السلام نے نامعلوم کن جذبات اور کن خیالات کے متحد وہ الفاظ کہے ہوں گے، مگر مسیحیوں کے نزدیک آئندہ آنے والے خطرناک اور مہیب راستوں میں اور قبر کے اندھیروں اور حشر و نشر کے تشویش افزا میدان میں وہ ایک ایسا دوست اور رہنما ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان ہر قسم کے دکھوں اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے. مجھے بھی پچھلے دنوں پہاڑ پر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پنجاب کے ایک مشہور و معروف پادری صاحب سے ہم کلامی کا موقع ملا. چونکہ وہ گفتگو جو میرے اور پادری صاحب کے درمیان ہوئی میرے خیال میں صراط مستقیم کے متلاشیوں کے لیے کسی صورت میں پہاڑی واز سے کم نہیں، اور چونکہ احد المتکلمین ایک مسیحی صاحب ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی اس گفتگو کا نام پہاڑی واز ہی رکھوں. امید ہے کہ پادری صاحبان مندرجہ بالا وجوہات پر غور کرتے ہوئے اس پر اظہار ناپسندیدگی نہ فرمائیں گے. عصر کے بعد حسب معمول میں اور میرے دوست ڈلہوزی سے بیلون کی طرف سیر کے لیے گئے. شام کے وقت گھر کو واپس آتے ہوئے راستے میں ایک طویل القامت کثیر اللہجہ پادری صاحب سڑک پر جاتے ہوئے ملے. مجھے خیال آیا کہ یہ پادری صاحب نامعلوم کہاں سے اور کن کن امیدوں کو ساتھ لیے ہوئے اس دور دراز گوشے میں پڑے ہوئے پہاڑ پر تشریف لائے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ ان سے مل کر ان کی کوششوں کی داد دی جائے. اس لیے میں نے سید عبد المحیی صاحب عرب مولوی فاضل کو، جو اس وقت میرے ہمراہ تھے، کہا کہ وہ پادری صاحب سے بڑھ کر دریافت کریں کہ ہم ان کی کوٹھی پر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اسے ناپسند تو نہ فرمائیں گے. پادری صاحب نے اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور ہمیں مسیحیت کا شکار سمجھ کر بڑی خوشی سے ملاقات کی اجازت دی اور بتا دیا کہ آپ کی کوٹھی بائیں جانب پوسٹ آفس کے نیچے ہے اور یہ کہ ہم جس وقت چاہیں ان سے مل سکتے ہیں. دوسرے تیسرے روز پادری صاحب ہم کو ڈلہوزی کے بازار میں کتابوں کا ایک بنڈل ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئے جو قریباً تمام کی تمام اسلام کے خلاف تھیں اور اسی غرض سے لکھی گئی تھیں کہ نادان اور جاہل مسلمانوں کو پھسلا کر دائرہ اسلام سے خارج کر کے مسیح کی بھیڑوں میں شامل کیا جائے. پادری صاحب نے ان دل ملاقات دو رسالے ہمیں بھی دیے جن میں اسلام اور اس کے بانی پر مختلف پیرایوں میں حملے کیے گئے تھے. انہیں پڑھ کر میری طبیعت میں اور بھی جوش آیا کہ پادری صاحب سے مل کر ضرور چند باتوں کا تصفیہ کرنا چاہیے. اس اتفاقی ملاقات کے دوسرے یا تیسرے دن فرصت نکال کر میں اور دو اور دوست پادری صاحب کی ملاقات کے لیے گئے. نصف گھنٹہ کی تلاش کے بعد پادری صاحب کی کوٹھی کا پتہ لگا جو ایک ایسی پرفضا اور خوبصورت مقام پر بنی ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار مسیح کا وہ قول یاد آتا تھا کہ دولت مند اس وقت تک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. डलहौजी पर बहुत ही उम्दा कोठियां हैं और आला से आला मकामात पर बनी हुई हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत और दिलकश जगह किसी को भी मुयस्सर नहीं आई। और सिर्फ मिशन ही की कोठी है कि जिसको ऐसी दिलरुबा सीनरी में वाकई होने का फख्र हासिल है। चूंकि पहले रोज अरब साहिब ही पादरी साहिब को मिले थे, इसलिए उन्हीं को आगे किया गया कि इजाजत हासिल करें। पादरी साहेब बरामदे में ही खड़े थे, देखकर बड़े तपाक से मिले और अंदर ले गए, और मुलाकात के कमरे में हम तीनों को बिठाकर 1-2 मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले गए। वापस आने पर पादरी साहेब ने हसबे मामूल मुख्तलिफ वाक्यात पर गुफ्तगू शुरू की और इंग्लिस्तान की मौजूदा हालत पर बातें होती रहीं। इसी दौरान में मालूम हुआ कि पादरी साहेब 35 साल से काम कर रहे हैं और गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट में मुद्दते मदीद तक आपने मिशन की खिदमात की हैं और आजकल 1 साल से पूना में हैं। इन पादरी साहिब का नाम लेगसन है, चूंकि हमारे रसाले के बहुत से नाज़रीन जो सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं आपसे वाकिफ़ होंगे। जैसा कि हमने बाहर सुना था, हमने इंदल मुलाकात पादरी साहिब को बहुत ही खलीक और नर्म पाया। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद पादरी साहब ने गुफ्तगू का रुख मसीहियत की तरफ फेरा और चाहते थे कि मसीहियत के मुतल्लिक तूल तवील तफसीलात में हमको ले जाएं और जो एहसानात मसीहियत ने यूरोप पर किए हैं हमारे सामने बयान करें। लेकिन चूंकि वक्त कम और फुर्सत कलील थी, मैंने अर्ज की कि हम सरे दस्त तसलीस के मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं, जिसकी पादरी साहब ने बड़ी खुशी से इजाज़त दी। ये गुफ्तगू गो के 2 घंटे तक रही, लेकिन जहाँ तक महफूज रह सकी उसे हम यहाँ दर्ज करते हैं और जिस तरह सवाल जवाब के पैराए में हुई इसी तरह लिखते हैं। चूंकि मैंने जाते ही पादरी साहब से अर्ज कर दिया था कि मैं आपसे जो गुफ्तगू करूँगा वो तालिबे हक होने की हैसियत से करूँगा, ना किसी मजहब के पैरव होने की हैसियत से, इसलिए मैं मंदरजा दैल गुफ्तगू में अपने नाम की जगह तालिबे हक का लफ्ज इस्तेमाल करूँगा। तालिबे हक। पादरी साहब, आपका तसलीस के मुतलिक क्या ख्याल है? पादरी साहब, मेरा ख्याल है कि तसलीस 3 उकनूम का नाम है, 1 उकनूम खुदा बाप, 1 उकनूम मसीह बेटा और 1 रूहुल कुदस, और मैं इन तीनों की खुदाई का कायल हूँ। तालिबे हक। पादरी साहब, आपकी उकनूम से क्या मुराद है? पादरी साहब मुस्कुराकर, उकनूम आप ही की ज़ुबान का लफ्ज़ है। तालिब हक, बेशक हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन हम खुदा ताला की निस्बत इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जब खुदा ताला की निस्बत ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो हमें इसके माने समझने में दिक्कत होती है। पादरी साहब, मैं तो और इसके लिए कोई लफ्ज़ तजवीज़ नहीं कर सकता। तालिब हक, अगर आप उर्दू या अरबी में इसके लिए कोई और लफ्ज़ तजवीज़ नहीं कर सकते तो अंग्रेज़ी में ही सही। अंग्रेज़ी में हम इसके लिए पर्सनैलिटी इस्तेमाल करते हैं। तालिब हक, मैंने एक अमेरिकन पादरी से दरियाफ्त किया था तो उन्होंने इसके मानी कैपेसिटी के बताए थे। पादरी साहब, नहीं नहीं, इसके मानी पर्सनैलिटी के हैं। तालिब हक, मुझे तो ना उकनूम के मानी समझ आते हैं और ना पर्सनैलिटी के। मैं तो आपसे खोल कर पूछना चाहता हूँ, आप ये फरमाइए कि ये तीनों क्या हैसियत रखते हैं, मसलन यही कि दुनिया का खालिक कौन है। पादरी साहब, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत है, इसमें मोहब्बत का मादा है, वो चाहता है कि किसी चीज़ से मोहब्बत करे और ये तमाम दुनिया की चीज़ें फानी हैं, असली नहीं है, इसलिए ज़रूरी था कि एक ऐसा वजूद होता कि जिससे खुदा मोहब्बत करता, सो इसलिए बेटे की ज़रूरत थी। और इसको तो आप भी मानते होंगे कि अगर कोई ऐसा वजूद ना हो कि जिससे खुदा मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत फजूल जाएगी। तालिब हक, पादरी साहब, आपने बहुत ही माकूल बात फरमाई है, लेकिन मैं इस वक्त तसलीस को समझना चाहता हूँ, ना कि तसलीस की ज़रूरत को। मेरा सवाल तो ये था कि यह दुनिया किस तरह पैदा हुई और किसने की। पादरी साहब, कलमे से पैदा हुई, खुदा ने की। तालिबे हक, कलमा दुनिया बन गया और यह दुनिया उसी का हिस्सा है या खुदा ने हुक्म दिया और वो हो गई। पादरी साहब मुस्कुराकर, ओहो, हमारा ये ख्याल नहीं है कि दुनिया नीस्त से पैदा हुई, ये आर्यों का ख्याल है। मुझसे एक दफ़ा एक आर्या मिला था, उसने मुझसे पूछा था कि दुनिया किस तरह पैदा हुई, नीस्त से हस्त किस तरह हो सकता है। मैंने उससे कहा था कि हमारा हरगिज़ ये मज़हब नहीं कि नीस्त से हस्त हुआ, खुदा ने हुक्म किया हो जा वो हो गई, हम नहीं मानते कि उसने नीस्त को कहा कि तू कुछ बन जा। तालिबे हक, ओहो, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत लतीफ़ बात कही, लेकिन मेरी अर्ज ये थी कि कलमे से दुनिया पैदा हुई या खुदा के अम्र पर दुनिया मौजूद हो गई। पादरी साहब, हाँ, कलमा मसीह है, इंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उससे मौजूद हुई और कोई चीज़ मौजूद ना थी जो बगैर उसके हुई, जिंदगी उसमें थी और वो जिंदगी इंसान का नूर थी। इससे मालूम हुआ कि इब्तिदा में खुदा के साथ मसीह था और मसीह से दुनिया पैदा हुई। आपके मजहब इस्लाम में भी मसीह को कलमा कहा गया है, क्या मैं आपको इसकी निस्बत कुछ सुनाऊं? तालिब हक, पादरी साहब, मैंने आपसे इब्तिदा ही में अर्ज कर दिया था कि मैं एक ऐसे इंसान की हैसियत से आपके पास आया हूं जिसकी नज़र में तमाम मजाहिब बराबर हैं और गो मैं मुसलमान हूं, लेकिन इस वक्त मैं ऐसे पैराए में गुफ्तगु करूंगा गोया कुल मजाहिब अभी मेरे ज़ेर तहकीक हैं, इसलिए आप अभी इंजील की निस्बत कलाम फरमावें। अगर कुरान शरीफ की तहकीकात की ज़रूरत होगी तो मैं किसी मौलवी के पास जाऊंगा। कुरान शरीफ की तहकीकात के लिए मुझे किसी पादरी के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वेद की निस्बत मैं पंडित से पूछूंगा, कुरान शरीफ की निस्बत किसी मौलवी से और बाइबल की निस्बत पादरी साहब से तहकीकात करूंगा। ये क्यों कर हो सकता है कि मैं बाइबल समझने के लिए किसी मौलवी के पास जाऊं और कुरान शरीफ समझने के लिए किसी पादरी के पास? आप इस वक्त बाइबल से कलाम फरमाएं। पादरी साहब मुस्कुराकर, हाँ तो बेशक आप बाइबल की निस्बत सवाल करते हैं, बाइबल से जैसा कि मैंने बतलाया है यही मालूम होता है कि कलाम से दुनिया पैदा हुई। तालिबे हक, तो पादरी साहब आप तसलीस के क्यों कायल हैं? कलाम में एक सिफत है और खुदा में बीसियों सिफात पाई जाती हैं, देखता है, सुनता है, कादिर है, अलीम है, खालिक है, आप सिर्फ सिफत कलाम को ही क्यों खुदा करार देते हैं? आप कुल सिफात इलाहिया को अबनाए इलाहिया करार दें। आपके मजहब के रूह से तो सिर्फ तसलीस पर ही कफायत नहीं की जा सकती। पादरी साहब, ओहो, आपको गलती लग गई है, क्या आप खुदा के कलाम को इंसानी कलाम समझते हैं? इस बात को तो आप भी मानते हैं कि खुदा में और इंसान में मुशाबहत नहीं है। तालिबे हक, पादरी साहब, कलाम वो जरिया है कि जिससे हम अपना माफी ज़मीर दूसरे पर जाहिर करते हैं। ये सच है कि खुदा ताला में और हम में बहुत फ़र्क है, वो खालिक है और हम मखलूक हैं, लेकिन जैसे इंसान के देखने की ताकत, सुनने की ताकत और उसके इल्म को आप लोग सिफात इंसानी करार देते हैं, इसी तरह खुदा ताला की भी इन ताकतों को सिफात ही करार देते हैं। फिर क्या वजह है कि खुदा की सिफत इल्म को या सिफत समा को तो आप सिफत करार दें और सिफत कलाम को इस बिना पर कि खुदा और इंसान में बहुत फ़र्क है दूसरी ज़ात करार दें? आप जानते हैं कि हम ज़ुबान से ज़ैद को हुक्म देते हैं कि तू आ और वो आ जाता है, हमारे माफी ज़मीर के इजहार का यही तरीका है, लेकिन हम अपने इस कलाम को अपने जैसा इंसान करार नहीं देते, ना ये कहते हैं कि हम दो हैं, एक हम और एक हमारा कलाम, और अगर ऐसा हो तो कलाम को एक ज़ात करार देना और समो बसर को ना करार देना तरजीह बिला मुरज्जे होगा। फिर अलावा अजीं आप सिर्फ इस कलाम को जिसके वास्ते दुनिया पैदा की गई क्यों खुदा कहते हैं? क्यों तौरात और इंजील और दीगर सुहफ़ अंबिया को खुदा करार नहीं देते? अगर आप खुदा की सिफात समो बसर इल्म को खुदा करार नहीं देते तो आप कम से कम इंजील यूहन्ना के मतहत के इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, इंजीलों तौरात को और दीगर सुहफ अंबिया को खुदा करार दें। पादरी साहब मुस्कुराकर, नहीं नहीं, हम इंजील तौरात को खुदा नहीं मानते, हमारे मजहब में ऐसा जायज नहीं, और हम तो कलाम को सिफत करार नहीं देते बल्कि एक ज़ात करार देते हैं। तालिबे हक, तो आप कलाम को क्या समझते हैं? पादरी साहब कुदरत। तालिबे हक, जनाब ने फरमाया कि हम कलाम को कुदरत समझते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कुदरत भी कोई अलहदा ज़ात नहीं। मसलन मेरे हाथ में पकड़ने की कुदरत है, ये कुदरत मेरे इरादे के मातहत है, इसमें खुद कोई इल्म नहीं। जब हाथ को हुक्म देता हूँ कि तू पकड़ तो वो पकड़ लेता है, इसी हाथ से मैं मुफीद से मुफीद और मुजिर से मुजिर चीज़ को पकड़ सकता हूँ, और मेरे इल्म और इरादे के मातहत मेरे हाथ को जिस चीज़ को मैं हुक्म दूँ पकड़ना होगा। मिसाल के तौर पर यह चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई है, बस अपने हाथ को हुक्म देता हूँ कि तू इसको पकड़, चुनाचे उसने मेरे इरादे के मातहत इसको पकड़ लिया, लेकिन खुद मेरे हाथ के पकड़ने में तो कोई इल्म नहीं। अगर आप मसीह को कुदरत भी करार दें और कलाम का दूसरा नाम कुदरत रखें, तब भी तो मसीह कोई अलहदा ज़ात करार नहीं पा सकता, वरना हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कुदरत ज़रूर होती है। तो इस तरह हर एक ज़ात को दो ज़ातें करार देना पड़ेगा, और दूसरे इस सूरत में ये भी लाजिम आता है कि मसीह इल्म और इरादे से खाली था, क्योंकि जैसा कि मैं साबित कर आया हूँ कि कुदरत सिफत इल्म और इरादा के बकुल्ली मातहत होती है, इस सूरत में मसीह खुदा के इल्म और इरादा के बकुल्ली मातहत हुआ, और वो चीज़ जो अलीम कदीर हस्ती के हाथ में एक हथियार के तौर पर हो और खुद इसका कोई दखल ना हो, वो खुदा नहीं कहला सकती। खुदा तो वही है जो अलीम कदीर हो और तमाम नकायस से मुबर्रा और खूबियों से मुत्तसिफ हो। पादरी साहब, हम तो मसीह को इल्म से खाली नहीं समझते, मसीह ज़रूर अलीम है। तालिब हक, यह बेशक दुरुस्त है कि आप मसीह को एक अलीम हस्ती मानते हैं, और गो मसीह इंजील में अपने इल्म का मुनकिर है, मगर इस वक्त मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं आप ही की बात को मानता हूँ, और चूंकि मसीह खुदा है इसलिए होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये एतकाद की बात है, और जैसा कि पहले बयान कर आया हूँ, आपकी खिदमत में ऐसे इंसान की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ जिसने आम दुनिया के एतकादों को देखकर फैसला करना है कि कौन सा एतकाद सच्चा है, और चूंकि ऐसा मुतलाशी किसी किताब का कायल नहीं होता, ज़रूरी है कि उसके सामने अकली दलाइल पेश किए जाएं, और जैसा कि मैं ऊपर बयान कर आया हूँ, मसीह को अगर कलेमा मान लिया जावे तो अव्वल तो वो एक सिफत और फिर इल्म से खाली साबित होता है, और चूंकि मैं अकली दलील से ही फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि या तो सिरे से मसीह के कलेमा होने का ही इनकार कर दूँ, या आपके कॉल को मानते हुए उसे कलेमा तो करार दूँ लेकिन इल्म से खाली। पादरी साहब, बेशक अक्ल तो यही कहती है लेकिन इंजील इस बात को नहीं मानती। तालिब हक, तो क्या अक्ल की रूह से तसलीस का मानना नामुमकिन है? पादरी साहब, इसमें क्या शक है कि अक्लें इंसानी हस्ती बारी की कुनों तक नहीं पहुंच सकती। तालिब हक, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए अक्ल ही एक समझ का जरिया बनाया है, तो बगैर अक्ल के हम किसी बात को मान क्यों कर सकते हैं? बेशक बाज़ बातें अक्ल से बाला होती हैं, लेकिन कोई इलाही मजहब अपने पैराओं से खिलाफ अक्ल बात नहीं मनवाता। मैं इस बात में आपसे मुत्तफिक हूँ कि ज़ात इलाही की कुनों को समझना इंसानी अक्ल का काम नहीं, क्योंकि वो महदूद है, मगर यह ज़रूरी है कि जिन बातों को मानना मदार नजात है, वो इंसानी अक्ल की पहुँच के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाज़ ऐसी बातें मदार नजात करार दे दी जाएं जो अक्ल के खिलाफ हों, तो इंसान के लिए नजात का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा। मसलन, अल्लाह ताला की हस्ती पर ईमान लाना नजात के लिए ज़रूरी है, तो हस्ती बारी का सबूत ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो अक्ल के खिलाफ ना हो, और हम देखते हैं कि वाकई इंसानी अक्ल मुख्तलिफ ज़राए से इस बात पर मजबूर है कि हस्ती बारी को माने, और खिलाफ इसके अल्लाह ताला के वजूद की कैफियत इंसान के दिमाग में नहीं आ सकती, इसलिए इसको इलाही मजहब छेड़ते तक नहीं। हाँ, जो हिस्सा सिफात इलाहिया का था चूंकि वो समझ में आ सकता था, इसलिए वो बयान भी कर दिया गया। बस चूंकि तसलीस का मसला आपके मजहब की रूह से निजात का जुज्व आजम है, इसलिए ये जरूरी है कि ये ऐसे पैराए में बयान किया जाता जिसको अक्ल इंसानी समझ सकती। पादरी साहब, बेशक अक्ल यही कहती है, लेकिन तसलीस के मानने से पहले अंजील का मानना जरूरी है। तालिब हक, इंजील को इंसान तब माने जब असूल मसीहियत साबित हो जाए। इन मसाइल के हल होने से पहले इंसान इंजील को कब मान सकता है? पादरी साहब, जैसा कि मैंने बयान किया है, इंजील को मानने से पहले इन मसाइल का समझना मुश्किल है। तालिब हक, बहुत अच्छा, आप इस मसले को तो अकली तौर पर हल नहीं कर सकते, यही फरमाइए मौजूदा ज़माने में इस तमाम दुनिया का इंतज़ाम किसके सुपुर्द है, खुदा बाप के या खुदा बेटे के? पादरी साहब, इंजील से मालूम होता है कि मखलूकात का इंतज़ाम मसीह यानी बेटे के सुपुर्द है। तालिब हक, तो क्या खुदा बाप दुनिया को कलमा की मार्फत पैदा करने के बाद खाली बैठा है? पादरी साहब, नहीं, सिफात इलाहिया का तातुल तो जायज़ नहीं, तमाम जहान का इंतज़ाम वही करता है। तालिब हक, पादरी साहब, अभी तो आपने फरमाया था कि बेटा इंतज़ाम करता है, अब इस बात के तीन पहलू हो सकते हैं, या तो ये कि एक मुअत्तल है और एक काम में लगा हुआ है, इस सूरत में एक खुदा की सिफात पर तातुल साबित आएगा जो जायज़ नहीं। दूसरी सूरत यह है कि दोनों बांट कर काम करते हैं, इस सूरत में ये मानना पड़ेगा कि एक खुदा सारा काम नहीं कर सकता बल्कि दोनों खुदा अपने अपने हिस्से का काम निपटाते हैं। इस सूरत में खुदा ताला पर नाउज़ु बिल्ला महदूदियत का इल्ज़ाम साबित होता है, और अगर ये माना जाए कि दोनों मिले जुले सारा काम कर रहे हैं तो इस सूरत में भी ये इल्ज़ाम आएगा कि अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्ला बेहुदा काम में लगा हुआ है। पादरी साहब, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये मसाइल अक्ल में नहीं आ सकते बल्कि खुदा के कलाम इंजील पर ईमान लाने के बाद समझ में आ सकते हैं। तालिब हक, जबकि बुनियादी उसूल ही समझ में ना आए तो हम इंजील को क्यों कर जाने? और चूंकि आप मसला तसलीस को खुद अक्ल के खिलाफ तस्लीम फरमाते हैं, इसलिए अब हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि ज़्यादा गुफ्तगु फजूल है। हमें कुछ और भी मसाइल पूछने थे मगर इसके लिए फिर किसी वक्त आएंगे। पादरी साहब, ज़ाते बारी की निस्बत अक्ल फैसला नहीं कर सकती, हमारा बड़ा असूल कफारे का मसला है और इसी पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। उम्मीद है कि आप फिर किसी वक्त तशरीफ लाकर इस मसले पर गुफ्तगू फरमाएंगे। इस बात का वादा करने के बाद हम पादरी साहब से रुखसत होकर अपने घर वापस आए और देर तक पादरी साहब के इन जवाबों पर हैरान और शशदर रहे।